नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में। घड़ी में जो समय है 8:30 का, ये समय होता है खेल जगत की तमाम खबरों को समेट कर लाने का, उन पर चर्चा करने का। स्वीकार कीजिए लवली निगम का नमस्कार और खेल खबरों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार विजय लोकपल्ली। विजय नमस्कार, स्टूडियो में आपका स्वागत है।
नमस्ते लवली।
तो विजय, देखा जाए आज अच्छी खबर है हमारे पास, स्क्वैश से भी है, बैडमिंटन में भी है, हम अच्छा कर रहे हैं और जैसे जैसे पेरिस ओलंपिक आ रहा है खिलाड़ी हमारे आगे क्वालिफाई कर रहे हैं और एक अच्छी उम्मीद जरूर दिखा रहे हैं।
अच्छी नहीं, बहुत ज्यादा उम्मीद है इस बार तो। अगर आप देखें निशानेबाजी में ले लीजिए या बैडमिंटन में ले लीजिए, एथलेटिक्स में ले लीजिए, काफी उम्मीदें हैं
जी। तमाम खबरों पर चर्चा करेंगे, पहले सुर्खियां। वेल्लवन सेंथिल कुमार ने बॉश ओपन स्क्वैश चैलेंजर टूर्नामेंट जीता। थॉमस कप बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत ने इंग्लैंड को 5-0 से हराया, क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। बैडमिंटन में 7 भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतर रैंकिंग के आधार पर पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। महिलाओं की स्कीट स्पर्धा में माहेश्वरी चौहान ने रजत पदक जीतकर पेरिस ओलंपिक के लिए कोटा सुरक्षित किया। और आईपीएल में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मैच जारी। भारत के वेल्लवन सेंथिल कुमार ने बॉश ओपन स्क्वैश चैलेंजर टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में दुनिया के 58वें नंबर के खिलाड़ी सेंथिल कुमार ने फ्रांस के मेलविन स्किया निमा निको को हराया 11-6, 11-9, 11-6 से। विजय, प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन टूर पर यह उनका 8वां खिताब है और अच्छा लगता है जब नए खिलाड़ी, क्योंकि इससे पहले स्क्वैश मतलब हमारे लिए सिर्फ सौरभ घोषाल होते थे।
जी हाँ, और घोषाल भी ऑफकोर्स इंडिया के तो वन ऑफ द ग्रेट्स ही माने जाएंगे, जो उन्होंने जितना उनको जो है सक्सेस मिला। लेकिन सेंथिल कुमार अगर आप देखें लवलीन कि 2016 में एशियन जूनियर चैंपियनशिप जीती थी उन्होंने और अगले ही साल ब्रिटिश जूनियर जीती, तो एक कंसिस्टेंसी रही है उनके खेल में। और अगर आप, मैं उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ रहा था कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी से साइकोलॉजी में उन्होंने ग्रेजुएशन की है, तो उसको उन्होंने भी, उन्होंने पीछे इंटरव्यू में बोला है कि उसको उन्होंने इस्तेमाल किया और जो उन्होंने वहां पे सीखा
मेंटल टफनेस
था। और वो बोलते हैं कि मेडिटेशन काफी करते हैं वो, तो अगर वो जीते हैं तो मुझे जरा सा भी आश्चर्य नहीं है
जी। और आगे उम्मीद करते हैं कि ये नए उभरते हुए खिलाड़ी आगे अच्छी अच्छी ऐसे हमको दे और स्क्वैश में भी हमें एक नया खिलाड़ी मिले
जी।
रैकेट की दुनिया की ओर रुख करें। थॉमस कप बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत ग्रुप सी में इंग्लैंड को एक तरफा मैच में 5-0 से हराया है, क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। अमन यादव की रिपोर्ट सुनते हैं, फिर चर्चा करेंगे।
एचएस प्रणय ने फॉर्म में वापसी करते हुए हैरी हुआंग को 21-15, 21-15 से हराकर टीम को 1-0 की बढ़त दिलाई। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने 21-17, 19-21 और 21-15 से हराकर टीम को 2-0 से आगे किया। इसके बाद पुरुष सिंगल्स में पूर्व नंबर एक खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत ने एक तरफा मुकाबले में नदील दलवी को 21-16, 21-11 से पराजित किया। पुरुष डबल्स के एक अन्य मुकाबले में एसआर अर्जुन और ध्रुव ने अपने गेम को 21-17 और 21-19 के जीतते हुए भारत की लीड को 4-0 कर दिया। आखिरी मुकाबले में 24 वर्षीय किरण जॉर्ज ने शानदार खेल दिखाया और चलोन कायन को 21-18, 21-12 से हराते हुए भारत को इंग्लैंड पर 5-0 की बड़ी जीत दिलाई। ग्रुप स्टेज के आखिरी मुकाबले में भारत का मुकाबला इंडोनेशिया से होगा। अमन यादव, स्पोर्ट्स कैन।
तो यहां भी देखा जाए, इंग्लैंड को हराया 5-0 से और हम क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं, अब इंडोनेशिया से खेलेंगे। एक बड़ी जीत और जैसे कहते हैं मोरल बूस्ट क्वार्टर फाइनल में जाहिर तौर पर।
बिल्कुल, और जिस ढंग से इन्होंने अपना प्रोग्रेस दिखाया है, अगर आप देखें बैडमिंटन में तो खास करके महिलाओं में भी, और इस वक्त मैं कहूंगा कि भारत के टॉप 5 खेलों में आप बैडमिंटन को आपको गिनना पड़ेगा
जी। और यहां भी देखा जाए, जैसे एचएस प्रणय हो गए, लक्ष्य सेन तो हो ही गए, इसके अलावा पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी काफी टाइम से बहुत अच्छा खेल रही है। पुरुष डबल्स में एक अनबीटन जोड़ी भी मानी जाती है।
जी हाँ, और जो बैडमिंटन के एक्सपर्ट्स हैं ना लवलीन, खास करके जैसे प्रकाश पदुकोणे हैं या विमल कुमार हैं, इनका मानना यह है कि एक आप ये मान लीजिए कि इनका मेडल मिलना तय है ओलंपिक्स में, पेरिस में। अब कौन सा रंग का मेडल लाते हैं ये देखना है, और अगर ये जाके स्वर्ण पदक भी जीते हैं तो आपको बिल्कुल आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो जोड़ी है इनका तालमेल बहुत गजब का है।
जी, और महिलाओं की बात करें, उबर कप जो है सिंगापुर को 4-1 से हराया, क्वार्टर फाइनल में यहां हम पहुंच गए हैं। क्वार्टर फाइनल में कल खेलेंगे इंग्लैंड के साथ। ये भी एक बैडमिंटन अगर महिला वर्ग में देखा जाए, अभी तक सायना नेहवाल, उसके बाद पीवी सिंधु, अब यहां भी अश्मिता चालिया वगैरह अच्छे इसमें भी युवा खिलाड़ी आ रहे हैं जिनसे उम्मीदें हैं, जो बहुत अच्छा प्रदर्शन करके बता रहे हैं कि अब नेक्स्ट रो तैयार हो रही है।
जी हाँ, इसमें आपको श्रेय देना पड़ेगा एसोसिएशन को, क्योंकि उनके जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो बहुत बेहतरीन है। आप इनको, स्पोर्ट्स अथॉरिटी बहुत सपोर्ट करता है इनको, जो बाहर खेलने भेजते हैं और इनको जो प्रशिक्षण मिलता है भारत में, हाँ एक्सपोजर, और इनके जो कोचेज हैं, आप देखें फॉरेन कोचेज आके इनको ट्रेन कर रहे हैं, उससे बहुत फर्क पड़ता है
जाहिर तौर पर। और बैडमिंटन को ही जारी रखें विजय, 7 भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतर रैंकिंग के आधार पर पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया। एक्चुअली इनके क्वालिफिकेशन तो पहले ही हो गए थे, लेकिन क्योंकि 30 अप्रैल तक रैंकिंग देखनी थी, तो ऑफिशियली आज भारतीय खेल प्राधिकरण साई ने बताया कि पुरुष सिंगल्स में HS प्रणय होंगे, लक्ष्य सेन होंगे। महिला वर्ग में 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु भारत की अगुवाई करेंगी। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी चिराग शेट्टी की जोड़े की चुनौती रहेगी, जिनका अभी हम जिक्र कर रहे थे, और महिला डबल्स में होंगे तनिषा क्रिस्ट और अश्विनी पोनप्पा। सारे खिलाड़ी ऐसे जिनसे हम उम्मीद कर सकते हैं, और जाहिर तौर पर पेरिस ओलंपिक में हम करेंगे कि ये खिलाड़ी किसी न किसी रंग का मेडल जरूर भारत के लिए लेकर आए
और मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं अश्विनी पोनप्पा को देखता हूं। अगर आपको याद हो 2010 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स से शुरुआत हुई थी, और अब जाके अब आप देखिए ओलंपिक्स में जाके खेलेंगी और मेडल लाएंगी, तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा
जी। कतर के दोहा में शॉटगन निशानेबाजी ओलंपिक क्वालिफिकेशन चैंपियनशिप में महिलाओं की स्कीट स्पर्धा में माशुरी चौहान ने रजत पदक पक्का किया, पेरिस ओलंपिक के लिए कोटा सुरक्षित कर लिया। फाइनल में कल 6 निशानेबाजों में सिर्फ 4 निशानेबाज कोटा हासिल करने के पात्र थे। कजाकिस्तान के असीम उरिनबे 5वें स्थान पर हार गए और अजरबैजान की लिगिना मेफ्ता के दिनोवा 6 स्थान पर रहीं। फिर माहेश्वरी और स्वीडन की क्वालिफिकेशन लीडर विक्टोरिया लार्सन के लिए 2 ओलंपिक कोटा की पुष्टि हो गई। निशानेबाजी में भारत के लिए 21वां ओलंपिक कोटा, शॉटगन में 5वां है। निशानेबाजी भी हमारा बहुत प्लस साइज रहता है, जहां से हम बहुत उम्मीदें करते हैं।
देखिए जो रास्ता अभिनव बिंद्रा या राठौर इन्होंने दिखाया, फिर बाद में विजय कुमार, गगन नारंग, ये सब नाम सबको मालूम है
जी।
पर रियो और टोक्यो में आप खाली हाथ लौटे थे, तो वो बहुत निराशाजनक था। लेकिन इस बार जैसे क्वालिफाई किए हैं, जो फॉर्म दिखा रहे हैं भारतीय खिलाड़ी, तो बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि पीछे उनको बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था कि खाली हाथ लौटे थे। लेकिन आप इस बार उम्मीद रखिएगा कि फॉर्म के हिसाब से जिस ढंग से क्वालिफाई करे हैं, मेडल्स तो जरूर आएंगे निशानेबाजी में।
और इसके अलावा जिसे आप जिक्र कर रहे हैं कि बहुत खिलाड़ियों को मौका मिल रहा है, अब देखिए इसी में हम आगे बढ़ें और बात करें, शंघाई में हाल ही में विश्व कप में रजत पदक जीतने वाली दुनिया की पूर्व नंबर 1 तीरंदाज दीपिका कुमारी को पेरिस ओलंपिक से पहले टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम में फिर शामिल किया गया है। 3 बार की ओलंपियन रिकर्व तीरंदाज दीपिका ने इस साल एशिया कप में भी पदक जीता। पुरुषों के व्यक्तिगत वर्ग में सिर्फ धीरज और बोमा देवरा ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। मिशन ओलंपिक ने 133वीं बैठक में स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह, अभय सिंह, वेलावन सेंथिल कुमार को भी टॉप्स विकास ग्रुप में रखा है। तो जो ये चीजें हो रही हैं, वही आगे खिलाड़ियों का बेहतर परफॉर्मेंस हमें फिर दिखता है।
और टॉप्स का तो आपको बहुत क्रेडिट देना पड़ेगा, उनका श्रेय बहुत बड़ा है। सिर्फ ये नहीं कि वो पैसा देते हैं, वो प्लान करते हैं कि कौन कौन से प्रतियोगिताओं में जाके खेलेंगे, कौन कौन से उनके जो कोचिंग जो कैंप्स हैं वो कैसे होंगे, और इंडिविजुअली हरेक को मॉनिटर करते हैं कि ये इंजरी ना हो जाए, ओवर एक्सपोजर ना हो जाए। सो टॉप्स का अपना बहुत बड़ा योगदान है।
आईपीएल के चलें, आईपीएल में आज कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीता है, पहले बल्लेबाजी करने का उन्होंने फैसला किया है। लेकिन कोई बहुत अच्छी खबर वहां से नहीं है, क्योंकि 13वां ओवर चल रहा है, 6 विकेट गिर चुके हैं, यानी लगभग सारे ही खिलाड़ी उनके वापस जा चुके हैं जो मेन बैट्समैन है, और 100 रन सिर्फ हैं। देखा जाए तो पृथ्वी शॉ 13 पे चले गए और ऋषभ पंत 27 रन बना के चले गए। तो लग रहा है कि बहुत जरूरी है कि अब थोड़ा टिक्के खेलें और कुछ तो स्कोर तो में 100 से आगे बढ़ाएं।
हाँ, 8 ओवर बचे हैं आपके पास, 8 के 7 ओवर गिन लीजिए आप, तो 7 ओवर में तो आपको कितना ज्यादा ज्यादा आप 160 तक ले जाएं, 170, अगर कोई भयंकर कोई ऐसी पारी खेल दे एकदम अचंभे
विस्फोटक बात है।
हाँ हाँ बिल्कुल, तो वो अलग बात है, लेकिन इस वक्त तो आपको ये कहना पड़ेगा कि कोलकाता का पलड़ा भारी है।
कोलकाता वैसे भी विजय देखा जाए तो अंक तालिका में दूसरे नंबर पर है, दिल्ली छठवें नंबर पर है। दिल्ली कैपिटल्स की बात की जाए, पिछले पांच मैचों में से चार में जीत हासिल की है, तो लग रहा था कि इसमें कुछ अब जीतने का उन्होंने क्रम शुरू कर लिया है। कोलकाता पिछले पांच मैचों में से तीन में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, तो इस मैच में कहीं ऐसा लग रहा था कि दिल्ली क्योंकि अब जीत की पटरी पर चल गई है तो शायद कुछ अच्छा प्रदर्शन करेगी, लेकिन फिलहाल लग रहा है कि मुश्किल है उसके लिए।
जी हाँ, आपको कोलकाता क्या के बोलर्स को आपको श्रेय देना पड़ेगा, और यहां पे अगर आप देखें कि जल्दी जल्दी विकेट निकल गए, कुछ सेट नहीं हो पाया।
जी कल लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला होगा मुंबई इंडियंस से। जया की रिपोर्ट सुनते हैं, फिर चर्चा करेंगे।
ये मैच लखनऊ के इकाना स्टेडियम में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस दोनों ही टीमें फिलहाल प्लेऑफ से बाहर हैं, लेकिन उनके आगे जाने की पूरी संभावना है। ऐसे में दोनों की टीमों के लिए यह मैच महत्वपूर्ण है। दोनों टीमें अब तक चार बार आमने सामने हुई हैं, इसमें से तीन बार लखनऊ और एक बार मुंबई ने बाजी मारी है। लखनऊ के इकाना स्टेडियम की पिच आमतौर पर धीमी रहती है, यही कारण है कि यहां पर स्कोर बहुत बड़े नहीं बनते। स्पिनर्स के लिए यहां की पिच से खास मदद रहती है, यानी जिस टीम के स्पिनर्स यहां बेहतर खेल दिखाएंगे वो टीम थोड़ा आगे रह सकती है। मैच आगे बढ़ता है तो टर्न भी बढ़ता है और बल्लेबाजों के लिए रन बनाना बहुत मुश्किल काम होता है। यहां पर बल्लेबाजों की अच्छी खासी परीक्षा होती है। इस स्टेडियम में कुल मिलाकर अब तक छह मुकाबले खेले जा चुके हैं, इसमें से पांच पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने अपने नाम किए हैं। आज के मैच में हार्दिक पांड्या और केएल राहुल में से जो भी कप्तान टॉस जीतेगा पहले बैटिंग का फैसला कर सकता है। जया भारती, स्पोर्ट्स स्कैन।
विजय, मैच ये वैसे कल खेला जाएगा, लेकिन काफी नजरें इस पे अगर देखा जाए तो राहुल पे बहुत रहेंगी इंडियन टीम की नजरें।
हाँ, क्योंकि अंडर प्रेशर है, अब तो सब जो भी खेलेगा उसको T20 जो वर्ल्ड कप आने वाला है वहां से आप उसको जो है एसेस करेंगे कि कितना इम्पोर्टेंट है, और जो जरूरी नहीं है एक्चुअली सेलेक्टर्स तो पूरा साल देखते आए हैं, उनकी अपनी प्लानिंग है, डोमेस्टिक के भी मायने रखते हैं, पर मान लीजिए कोई खिलाड़ी है जो इस टूर्नामेंट में नहीं कर पाया तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो सेलेक्टर्स के रडार में से चला गया, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो फॉर्म देखेंगे जरूर, टीम का बैलेंस देखेंगे, और बड़े स्टेज पे आप कैसे परफॉर्म करने की आपकी क्या क्षमता है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि राहुल द्रविड़ इस चीज पे बहुत कोच जो है वो जोर देते हैं कि बड़े मैच का टेम्परामेंट आपके पास है या नहीं।
जैसे अभी जया ने बोला कि यहां बल्लेबाजों की अच्छी परीक्षा होती है और अब तक छह मुकाबले खेले जा चुके हैं, पहले बल्लेबाजी करने में पांच बार जीता है। हालांकि ये आंकड़े होते हैं जो कागजों पे होते हैं और जिस दिन जो टीम बेहतर खेलती है जीत उसी के हासिल होती है, लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच आपको क्या लगता है कि किसका ज्यादा, हार्दिक पांड्या या केएस राहुल?
लखनऊ देखिए घर पे खेल रही है, पर उन्होंने मुंबई से तो बेटर खेल रही है, मुंबई की भी हालत खराब है, आरसीबी जैसे रॉयल बैंगलोर की हालत खराब है, तो मैं यहां पे समझूंगा कि जो लोकल टीम है जो अपने घर पे खेल रही है उसको एडवांटेज मिलना चाहिए, और पिच ठीक है, अब हमने सुना जैसे कि धीमी गति से आती है गेंद, लेकिन जरूरी नहीं है कि इस मैच में धीमी गति से आए, क्योंकि जो वहां पे क्यूरेटर हैं वो बहुत अच्छे हैं अग्रवाल जी, और उनको बहुत इस चीज का एक्सपीरियंस भी है, अच्छे पिच बनाते हैं, तो मुझे लगता है कि कल का मुकाबला अच्छा होना चाहिए।
और इस बीच सातवां विकेट भी गिर गया है, अभी 13.3 ओवर मतलब 14वां ओवर चल रहा है। कल रात चेन्नई के एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 78 रन से हराया। चेन्नई के लिए तुषार देशपांडे की 4 विकेट और मथीशा पाथिराना के महत्वपूर्ण 2 विकेटों ने ही शायद सनराइजर्स हैदराबाद को तारे नजर करवाए और वो हार गए। तो इसमें भी देखा जाए चेन्नई की टीम से क्या उम्मीदें हैं आपको लगती हैं कि अब अच्छा प्रदर्शन धीरे धीरे वो लोग कर रहे हैं?
चेन्नई तो देखिए इस टूर्नामेंट की एवरग्रीन टीम है, आप किसी भी स्टेज पे वापस आते हैं, कहीं से भी मैच जीतते हैं, खिताब उन्होंने जीते हुए मुंबई और मैं समझता हूं के मुकाबले की टीम है, सबसे कंसिस्टेंट टीम चेन्नई रही है, तो आप उनके साथ इजी नहीं ले।
टेबल भी बड़ा अच्छा है, राजस्थान रॉयल्स टॉप कर रहा है, लेकिन अब समय नहीं है टेबल पर बात करने का। आप हमारे स्टूडियो में तमाम खेल खबरों पर चर्चा हुई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
और लिसनर्स, हम आपसे कल मिलेंगे, फिलहाल शुभरात्रि।